Om Shanti and welcome to this lovely evening and lovely session. मैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी को मंच ग्रहण करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा और हम सभी डॉक्टर गिरीश भाई को तो सुन सके हैं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर नैन और मनीष, ब्रदर मनीष को गुलदस्ते और बैच से गिरीश भाई का स्वागत करें. सब करतल ध्वनि से लॉट्स ऑफ अप्लॉज. थैंक यू वेरी मच. शांति. डॉक्टर गिरीश पटेल का इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है. इट इज ए प्रिविलेज फॉर मी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर गिरीश पटेल. संक्षिप्त में उनका परिचय आप सभी को करवाना चाहूंगा. बाकी गिरीश पटेल जी को तो हमने सभी ने देख चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उनका परिचय इस प्रकार से है. आपने अवार्ड विनिंग साइकाट्रिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस किए हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड एन इंटरनेशनल ट्रेनर हैं. आपने MBBS फॉलोड बाय PhD डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है. आप फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड पेट्रॉन फॉर द सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स हैं. आपको देश विदेश से निमंत्रण निरंतर मिलते ही रहते हैं. कुछ एक अभी निमंत्रण जो उन्होंने को प्राप्त हुआ था वो था यूनाइटेड नेशंस से, जो बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है, स्विट्जरलैंड से. आप UNDP मलेशिया और भारतीय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं. कुछ एक इंस्टीट्यूट हैं, इसरो जो आप सभी जानते हैं, इन एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, DRDO, BARC, दुबई पुलिस में भी आपने जाकर के उन दुबई पुलिस वालों का तनाव को रिलैक्स करवाया है, और एकेडमी ऑफ मलेशिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स पोलैंड, यहां जाकर के आपने आपकी सेवाएं दी हैं. आपने कई देश विदेश के बहुत ही फेमस कॉरपोरेट्स, जो बहुत ही प्रख्यात है, जो ब्लू चिप कंपनीज है, उन वहां पर भी जाकर के आपने सेमिनार्स किए हैं. कुछ एक कंपनीज के नाम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, रिलायंस, टाटा स्टील, विप्रो, नोकिया, सेमीकंडक्टर्स मलेशिया, ऐसी कंपनीज में आप जाकर के बहुत ही अच्छी तरह से आपने आपके लेक्चर्स का लाभ और सेमिनार्स का लाभ उन कॉरपोरेट ऑफिसर्स को दिया है. आपको कई यूनिवर्सिटीज से भी इन्विटेशन मिलता रहा है निरंतर, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लोकल आइलैंड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी आप जाकर के आपने आपके क्लासेस और आपकी जो भी विचारधारा है वहां पर रखी है. आप विजिटिंग प्रोफेसर, जो एक बहुत ही अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ सेमी, जो कि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान, वहां पर आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हैं. आपने कई सेमिनार्स हॉस्पिटल्स में, जैसे कि बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है जसलोक हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल एट दिल्ली, वहां पर आपने आपके काफी रिलैक्सेशन टेक्निक से लोगों को वहां पर अपनी शिक्षाएं दी है. आप टोटल हेल्थ प्रमोशन नेटवर्क, जो एक राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की कंसर्न है, आप उसमें एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी एवं प्रेसिडेंट हैं. आप फाउंडर ऑफ माइंड जोन, जो कि एक चेन है टोटल मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स का, आप उनके फाउंडर मेंबर भी हैं. आपने तकरीबन 8 बुक्स, जो मैंने पहले बताया था कि वेरी फेमस ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, आपने 8 किताब लिखी हैं, टोटल 400 से भी अधिक टॉक शोज ऑर्गेनाइज किए हैं वेरियस चैनल्स में। आप गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड एड्स डे 1993 में आपको नवाजा गया था, इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोथेरेपी, रोटरी सर्विस अवार्ड बाय रोटरी ऑफ कानपुर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खार जिमखाना जो मुंबई में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जिमखाना है, और सेंटेनरी मेडल बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स पोलैंड। इनसे भी थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि गिरीश भाई बोरीवली में रहते हैं इसलिए मुझे इनके साथ रहने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। एक छोटा सा इंसिडेंस जो मुझे इनके पास से प्रेरणा मिली थी मेरी लाइफ में, बहुत साल पहले इन्होंने अपने एक सेशन में बताया कि जब उन्होंने अपनी डिग्री लेकर के अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट वी हैव टू डिसाइड, वो बहुत ही कम उम्र में उनके बाल झड़ चुके थे, बाल्डनेस बहुत ही कम उम्र में आ गई थी। तो उनके कलीग्स काफी बोलते थे कि यू शुड डू सम इलाज करना चाहिए और आपको या तो विग पहनना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने कहा, अपने आप को कहा कि मैं बाल्ड हूं तो जो भी पेशेंट्स आएंगे वो ये समझेंगे कि ही इज द सीनियर मोस्ट डॉक्टर। तो ये एटीट्यूड, देखो परिस्थिति हर इंसान के साथ होती है, लेकिन आइदर एक परिस्थिति में इंसान डिप्रेस हो जाता है नेगेटिव सोच सोचकर, और एक परिस्थिति में जैसे गिरीश भाई जैसे, हर परिस्थिति को उन्होंने पॉजिटिव एंगल से देखा और आज शायद इसीलिए ही इज सिटिंग हियर। वंडरफुल क्लैप्स। एंड आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, जो रिलेटेड विथ ऑल द लेडीज सिटिंग ओवर हियर, ऑल द जेंटलमैन सिटिंग ओवर हियर, काम इन क्राइसिस। वंडरफुल सब्जेक्ट। आई वेलकम डॉक्टर गिरीश पटेल विद राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच।
राजेश भाई ने मेरे बारे में ज्यादा ही आपको सुना दिया, मुझे लगता है 50% आपने नहीं सुना होगा, पूरा सुना होगा तो मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। सब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? मैं बोल भी नहीं रहा हूं तो आप कैसे सुन सकते हैं? हम बोलते बोलते भी मैं और कुछ सोच रहा हूं, आप भी सुनते सुनते और कुछ सोच रहे। जो पहले दिन प्रूव किया था ना कि हम देखते नहीं है, हाँ अभी प्रूव करके बताऊं कि सुनते नहीं है, कि मान लिया, हाँ मान लिया सुनते नहीं है कि सुनते, माइक नहीं है, सुनते हैं या नहीं सुनते? अच्छा देखो नहीं सुन रहे, सिद्ध करके बताता हूं। ध्यान से सुनना, उंगली को ऐसे करो ना, सभी उंगली को ऐसे करो, उंगली को देखते रहो, उंगली को देखते रहो, उंगली को देखते रहो, उंगली को दाढ़ी पे लगाओ। क्या कर रहे हैं? नाक पे लगा रहे हैं। हाँ, बहुत लोग नाक पे लगा रहे, क्यों? मैंने लगाया ऐसे, क्या बोला था? तो फिर नाक पे क्यों लगाया? मैंने लगाया था, तो देख रहे पर तो सुन नहीं रहे। समझ गए कि हम देखते परंतु सुनते नहीं है, तो अच्छे से सुनना भी है तब फायदा होगा ना। ये सीरियस टॉपिक है थोड़ा, हाँ आपको बहुत कुछ सीखना है कि सचमुच क्राइसिस में काम कैसे रहे, टेक्निक समझनी पड़ेगी, तो इसके लिए ध्यान से सुनना है ना। फिर भी प्रतिक्रिया देने की, शायद ताली बजाने की बातें कम होगी, हंसने की बातें कम होगी, किंतु भी कुछ भी पूछो ना, हाँ ना तो जवाब देने का, बस सिंपल सी बातें होगी। क्यों जवाब देने का? कि जिनका मन यहां वहां चला गया ना वापस आ जाए। देखो बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है मंदिर में जाते घंट क्यों बजाते? भगवान को जगाने के लिए। क्या भगवान सोया हुआ है? हाँ, मंदिर में घंट इसलिए बजाते हैं, अटेंशन प्लीज, है ना, अभी भगवान के पास आए हो, यहां वहां मन नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे आप कुछ बोलेंगे तो सभी को होगा अटेंशन प्लीज, ठीक है? अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट इन बातों को फील करना। जितना फील करेंगे, जितना ये भाव लाएंगे कि ये सब टेक्निक्स को मुझे सीखना है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, शुरू करें। एक दो लोग ही बोलते हैं, जवाब देना है। ओके, हाँ, आप सबका वेलकम है। हाँ, इसमें मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देने वाला हूं, हम लोग आपस में छोटी मोटी बातें करेंगे, तो इसलिए मेरे साथ साथ जरूर पार्टिसिपेट करना। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि मॉडर्न मैन, हमारी बेसिक नीड्स आज फुलफिल्ड है ना। हम सबके पास रहने के लिए घर है ना, खाने के लिए दो टाइम मिलता है, फिर भी हम एंग्शियस होते हैं, पैनिक होते हैं। आजकल लोग उठते हार्ट बीट बढ़ जाती है, सारा दिन डर के जीते, तो उसका कारण क्या? और देखो दूसरा ही जो बात है, हाँ, हेलेन केलर नाम सुना है? सुना है हेलेन केलर कौन थी? हाँ देखो, हेलेन केलर गुंगी थी, बहरी थी, हेलेन केलर बहरी थी, गुंगी थी, है ना, एक भी अंग काम नहीं करते थे, हाँ, फिर भी उसने बहुत कुछ काम किया। और आप देखेंगे कि 68 इयर्स में उसका फोटो लिया गया था, कितनी स्टेबल है। तो ऐसे ही हमें बनना है, हेलेन केलर से सीखना है कि दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस, फिर भी वो कैसे स्टेबल रही। एक बहुत अच्छी नॉवेल लिखी गई है ना, उसकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि वो एलियंस आते हैं ना, भी एलियंस आते हैं और पृथ्वी पे आके पृथ्वी के लोगों के जीवन को स्टडी करते, कि पृथ्वी के लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे, क्या सोच रहे, कैसा उनका व्यवहार है, और अंत में वह ये निर्णय पर आते क्या कि पृथ्वी का मानव मेजोचिस्ट है। मतलब सैडिस्ट, आपने सुना है ना, कि जो औरों को दुख देता है और उसको सुख मिलता है। कहा कि पृथ्वी का मानव मेजोचिस्ट है, अर्थात कि वो अपने आप को दुख देता है, उसको एक्चुअली दुख का कोई कारण नहीं है, उसका जीवन तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को दुखी करता है, फिर उसके बारे में कंप्लेन करता है। समझ गए? तो हमें वास्तव में ऐसा नहीं करना है। और क्यों क्राइसिस में काम रहना है ना, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्राइसिस में जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एक तो शायद आप कहेंगे कि हम तो बहुत बड़े रेलवे के ऑफिसर है ना, हम तो बड़ी एयरलाइंस में काम करते हैं, हाँ, क्राइसिस आने दो, जब बीमार होंगे तो बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में जाएंगे, और कोई अंग डैमेज हो तो आप बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में भी जाएंगे, लेकिन ब्रेन डैमेज हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स कैन नॉट बी रीजनरेटेड। धीरूभाई अंबानी का भी ब्रेन डैमेज होने लगा था, बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको बचा नहीं पाए, तो उसको हमें प्रिजर्व करना है। और इसलिए क्राइसिस सबके सामने आएगी, विदाउट नोटिस आएगी, फिर भी अपने आप को काम रखना है। और दूसरा कारण है कि जो हमारे में रंग सूत्र है, कहते डीएनए होते, डीएनए अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। जैसे भी मैं बोल रहा हूं तो भी कुछ इफेक्ट होगी, कोई क्राइसिस आएगी तो भी कुछ इफेक्ट होगी, परंतु अगर मैंने तुरंत उसको मैनेज कर लिया, मैं रिलैक्स हो गया, तो डीएनए अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस समय क्राइसिस में घबरा गए, हार्टबीट बढ़ गई, नर्वस हो गए, पसीना आ गया, गुस्सा कर लिया, तो डीएनए अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे और वो डैमेज जीवन भर चलेगा, अगली पीढ़ी में भी आएगा। आज बहुत सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है, क्योंकि वो जीन्स ही खराब उनको मिले। तो इस लक्ष्य से भी, हाँ, एक यूनिवर्सल सोच के भी हमें सचमुच, जो मैं आपको सिंपल सी टेक्निक्स बताऊंगा, वो सब जीवन में अपनानी है, ताकि अपने आप को काम रख सके। और एक छोटी सी बात कि कि चलो क्राइसिस है, परंतु क्राइसिस को मैनेज करने के लिए क्या क्या चाहिए? जी सर, हाँ क्राइसिस है, सपोज भी रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, है ना, क्राइसिस हो गई। अभी कहते बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है ना, क्राइसिस हुई, तो अभी उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो फटाफट। पहले कूल रहना पड़ेगा। और क्या चाहिए बोलो, चाहिए क्या, जरूरत क्या है क्राइसिस को मैनेज करने की? हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और एक एक बोलो, पेशेंस चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, है ना, क्रिएटिविटी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये सब कब ले पाएंगे? जब आप स्टेबल होंगे, है ना। अगर अनस्टेबल हो गए, पैनिक में आ गए, नर्वस हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जिस बात की जरूरत है वही आप कर नहीं पाएंगे। करेक्ट, यस और नो? हाँ, तो इसलिए कूल रहना सीखना है, और ये पहले से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्राइसिस का ही मतलब है कि वो अचानक आएगी। इसलिए टाइम मैगजीन ने एक पूरा अपना इश्यू निकाला था, जिसमें था कि भी आपकी ईक्यू क्या है ना। कईयों की आईक्यू अच्छी हो सकती है, परंतु इमोशनली अगर वो अच्छे नहीं है। ईक्यू का क्या मतलब है कि आप इमोशंस को मैनेज कैसे करते हो। समझो अभी आपको न्यूज मिले कि घर में किसको हार्ट अटैक आ गया, तो इमोशंस आएंगे, है ना, तब उसको सही रूप से मैनेज कैसे करना है ना, तो हुआ है ईक्यू। आईक्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहते ईक्यू इंपॉर्टेंट है। यह माना गया है कि आपकी आईक्यू अच्छी है तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परंतु प्रमोशन तब मिलेगा जब आपकी ईक्यू अच्छी होगी। बिकॉज ऑफ आईक्यू यू आर हायर्ड, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईक्यू यू आर फायर्ड। कि ईक्यू अच्छी नहीं होगी तो आपको जॉब से निकाल देंगे। तो इसलिए हमें काम रहना क्या है, वो ही रह पाएगा जिसकी ईक्यू अच्छी है, जो इमोशंस को सही रूप से मैनेज कर पाता है। कहते हैं कि आईक्यू सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत बड़ा पोर्शन है वह है ईक्यू। और ईक्यू से क्या होगा कि सचमुच उस स्टेट में आपको क्या करना चाहिए, है ना, कैसे डील करना है, परिस्थिति से कैसे डील करना है, व्यक्ति से कैसे डील करना है ना, वह हमें ईक्यू सिखाता है। तो अगर क्राइसिस में काम रहना है तो ईक्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और ये क्यों जरूरी है कि ईक्यू इसलिए जरूरी है कि जो हमारी इंटेलिजेंस भी है उसको भी अगर मैनेज करना है तो ईक्यू अच्छी नहीं होगी ना तो बादल छा जाएंगे। इसी स्टेज से एक रेलवे के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि भी मेरा प्रॉब्लम है ना वो फिगर से रिलेटेड होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने कहा कि अब आज मैं सीनियर ऑफिसर हूं रेलवे में, आज मुझे लगता है कि मेरा प्रॉब्लम फिगर से रिलेटेड नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है लोगों का प्रॉब्लम। माय प्रॉब्लम इज पीपल्स प्रॉब्लम, हाउ आई कैन मैनेज माय टीम। तो इसलिए यहां पर हमें सचमुच सीखना है कि हमें ईक्यू को अच्छा बनाना पड़ेगा। अब फाउंडेशन क्या है? क्राइसिस में अगर काम रहना है तो उसका यह फाउंडेशन है। देखो ये वाक्यों को अच्छी तरह से याद रख लो, हा, कि परिस्थिति में जान नहीं होती है, सिचुएशन आर लाइफलेस, वी गिव लाइफ टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग विच वी गिव टू दैट सिचुएशन। उसको आप अर्थ क्या घटित करते हो, हाँ बहुत कुछ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल भी बिजनेस में लॉस हो गया, भी क्राइसिस है. आपका जॉब चला गया, क्राइसिस है. दिनेश रावत करके मेरे एक फ्रेंड है कोलकाता में, काफी समय पहले की बात है ना, उनको जॉब से निकाल दिया गया है ना, तो एक क्राइसिस थी. परंतु उन्होंने थोड़ा कूल रखा और फिर सोचा कि अभी क्या क्या अल्टरनेटिव है. सर उन्होंने सीखा नहीं था जो मैं बताने जाऊंगा आपको. ऑटोमेटिक सोचा कि भी पॉसिबल, उन्होंने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं. वो थोड़ा टाइम लगा लेकिन आज एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है. उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मेरा जॉब चला गया, अगर मुझे जॉब से नहीं निकालते तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि बिजनेस करना है. शायद मुझे 2-3 प्रमोशन मिलते अब तक. तो ऐसे सिचुएशन आर लाइफलेस है ना, उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. देखिए भयानक परिस्थिति आपको बताता हूं कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है. रेप विक्टिम्स, कि जो रेप विक्टिम्स है उसमें से मेजोरिटी आप देखेंगे कि वो, उनको गुस्सा आया, गिल्ट में गए, डिप्रेशन आया, उनको जीवन भर उस समस्या को लेकर के चलते रहे. परंतु कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने उस परिस्थिति का फायदा उठाया और इस प्रकार के जो और लोग सफर कर रहे थे उनकी वह सेवा करने लगे ना, उनको उन्होंने मदद की कि भी कैसे इससे बाहर आना है, क्या करना चाहिए. तो उनमें से कईयों ने भी कहा कि भी ये हमारे साथ घटित हुआ तब हमने इस एंगल से सोचा, नहीं तो हम कभी सोचते ही नहीं. तो जब इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कोई स्टेबल रह सकता है, उसका सही उपयोग कर सकता है, तो हमारे सामने तो छोटी छोटी समस्याएं हैं. तो इसीलिए सीखना कि भी कैसे हम परिस्थिति को दोष न दे. सिचुएशन आर लाइफलेस. अब प्रैक्टिकली क्या है कि भी क्राइसिस होती है, जीवन में क्राइसिस आएगी और फिर हम बीमार होते हैं, या तो साइकोलॉजिकली या फिजिकली हम सफर करते हैं. परंतु वो दोनों के बीच में कुछ है, देख रहे हैं ना, उसके बीच में क्या है, जिसको कहा पर्सनल फैक्टर्स. ये पर्सनल फैक्टर सबके अलग अलग है, क्राइसिस एक जैसी हो सकती है ना. ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, परिस्थिति अगर ये सत्य घटना, एक बार एक ट्रेन थोड़ी डिरेल हो गई, ज्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई ऐसे, फिर तो सब कुछ ठीक था, बस कुछ लोग गिर गए, कईयों को मामूली चोटें आई और कुछ नहीं हुआ ना. और फिर मदद मंगाई गई, लोग तो चिल्ला रहे थे वहां पे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति खिड़की के सामने बैठ करके, सचमुच सवेरे का समय था है ना, सूर्योदय हो रहा था, तो खिड़की के पास वो बैठा, उसे कह रहे वंडरफुल, कितना अच्छा नजारा है, चलो इसका आनंद लेते हैं. तो दीज आर द पर्सनल फैक्टर्स, और वो पर्सनल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं बहुत सारे तरीके. उनमें से एक चीज है मेडिटेशन का अभ्यास भी, कि जो आपके पर्सनल फैक्टर्स को अच्छा बनाएगा. मैं आपको काफी बातें बताऊंगा. एक जो नई बात है कि इस पे सोचना शुरू करो, ये मुझे ऐसी कुछ बातें एक विस्डम धारण करनी है जीवन में. एक बहुत अच्छे कवि को किसी ने पूछा, देयर इज लाइफ, तो उन्होंने कहा वी हैव लॉस्ट इन विस्डम, प्रज्ञा में हमने जीवन को खो दिया है. देयर इज विस्डम, वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, ज्ञान में हमने उसे खो दिया है. ज्ञान कहां है, कहा इंफॉर्मेशन में हमने उसे खो दिया है. तो आज हमारे बच्चों को हमारे से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है परंतु ज्ञान की कमी है, और विस्डम तो है ही नहीं. तो जरूरत है, देखो कई लोग मुझे भी पूछते कि आप मनोचिकित्सक बने, जीवन के बारे में सोचा, ये सब किया, आपको क्या लगता है कि भी जीवन में करना क्या चाहिए. तो अगर एक लाइन में बोलना हो तो मैं ये बोलता हूं कि अगर जीवन में कुछ करना है ना तो ये विस्डम को एक्वायर करना चाहिए, है ना। हिंदी में कहेंगे प्रज्ञा। नॉलेज अलग चीज है, विस्डम है एक प्रकार से ऐसी समझ, एक प्रज्ञा। विस्डम आ जाए देखो ये जीवन में तो मदद करेगी, आने वाले जन्मों में भी वह आपको मदद करेगी। तो रोज थोड़ा टाइम देना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से ज्ञान को अर्जित करें, प्रज्ञा को बढ़ाते जाए। पहले तीन फंडामेंटल स्टेप्स कि क्राइसिस में काम कैसे रहे, है ना। क्राइसिस में काम रहना है ना, तो डॉक्टर अला को कांटेक्ट करो, हाँ, ALA। ए का मतलब है अवेयरनेस। मैं बताऊंगा आपको अवेयरनेस क्या है। अभी भी आपको जो अंदर में कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, दैट इज अवेयरनेस। जैसे भी वॉमिटिंग होता है ना, उससे पहले भी कुछ कुछ होता है, तो उसको कैच करना वह है अवेयरनेस। गुस्सा आने से पहले कुछ होता है, उसको पकड़ना वह है अवेयरनेस। आप डिप्रेस्ड होते उससे पहले कुछ अंदर में फिजिकल मेंटल सेंसेशन आते, उसको कैच करना वह है अवेयरनेस। तो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, सेकेंड इज लिसन, कि जब भी क्राइसिस आए तभी सुनो। आप कहेंगे क्राइसिस में क्या सुनने का है, परंतु तनाव की एक परिभाषा है। इस परिभाषा में कहा है कि तनाव एक संदेशवाहक है जो यह कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसलिए जब भी क्राइसिस आए ना तो सचमुच सुनो, वो कुछ कहने को आ रहा है। जैसे ठंडी की मौसम आती है, हाँ, तो क्या कहने को आई है बताओ। ठंडी आई तो क्या संदेश लेके आई, गरम कपड़े पहनो नहीं तो सर्दी हो जाएगी, तो ना वो मैसेज है। इससे कितने भी बड़ा क्राइसिस हो वह कुछ मैसेज लेकर के आया है, है ना। उसको सुनो कि क्या बोलने को आया है। वास्तव में कहते कोई भी क्राइसिस अगर आप सही रूप से उसको मैनेज करो तो आपको आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं ले जाता है। पीछे हम तब जाते हैं जब हम उसको मैनेज नहीं करते ठीक से। तो इसलिए क्राइसिस आए तो क्या करना है, बोलो वेलकम। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि भी क्राइसिस को कैसे मैनेज करो, है देखो तीन शब्द है, कुछ डायरी पेन हो तो लिख भी लो। तीन शब्द है, ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। मतलब कि ग्रीट करो, वेलकम करो, हेलो हाय वेलकम। फिर मीट इट, कोई भी क्राइसिस आई तो वह कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आई कि अपने आप को ऐसे चेंज करो, उसको मीट करो। और थर्ड है बीट इट, मतलब उसको हरा दो, तो लिसन। और तीसरा है एक्शन, क्राइसिस को मैनेज करना है तो अवेयर हो जाओ, लिसन एंड टेक एक्शन, क्योंकि दैट इज क्राइसिस। तो बस ये फॉलो करना, देखना आप स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब अवेयरनेस जो मैंने कहा, अवेयरनेस क्या है कि कुछ भी थॉट आए उससे पहले कुछ होता है। चेस्ट में पेन होगा, पेट में गड़बड़ी होगी, सर में कुछ होगा, कान में कुछ कुछ ना कुछ, आप देखना कुछ कुछ होता है। और ये भी जैसे मैंने विस्डम की बात कही ना, ऐसे एक बहुत बड़ा अभ्यास है कि हमें अवेयरनेस का अभ्यास करना है। देखो अवेयरनेस का मतलब क्या, मैं आपको करके बताता हूं। हाँ, कमर को सीधे रख के बैठो। हाँ, अभी आपको करना क्या है मैं आपको बता, पहले से बता देता हूं। हाँ, कि एक बार हम हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर आप सांस के बारे में सजग होना कि सांस ले रहा हूं, सांस बाहर आता है, क्या हो रहा है, सांस छाती में जाता है, पेट में क्या हो रहा है, गले में क्या हो रहा है, उसके बारे में सजग होना। और फिर जब मैं आपको कहूंगा ना चेंज, तो ऐसे कर लेना, समझे। पहले ऐसे रखना है, फिर जब अवेयरनेस आएगी मैं आपको बोलूंगा चेंज, तो ऐसे करना और फिर से अवेयर होना कि ये सांस में क्या हो रहा है। आप सूक्ष्म में फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट है, सब कुछ तो सेम टू सेम है, वातावरण सेम है, परिस्थिति सेम है, सब सेम है, चेंज क्या हुआ? हाथ ऐसे के ऐसे कर, इतने में आप देखना आपकी सांस की पैटर्न थोड़ी सी चेंज होगी और वो डिफरेंस को कैच करना वह एक प्रकार से अवेयरनेस है। ठीक है, करेंगे। हाँ देखो, हाथ को ऐसे रखो, हाँ आंखें बंद करो, हाँ अपनी सांस की गति को फील करो, क्या हो रहा है, सांस ले रहे हैं, चेस्ट में क्या होता है, पेट में क्या होता है, सारी संवेदना को अच्छे से फील करो। नाउ चेंज, हाथ को चेंज करो, अभी फील करो सांस ले रहे हो, कैसा फील हो रहा है, ये भी पता करो कि दोनों में फर्क क्या था, पहले सांस ले रहे थे तब की सेंसेशन में, फीलिंग में, अभी हाथ को बदली किया तब की सेंसेशन और फीलिंग में क्या फर्क है। हाँ आंखें खोलो, लगा कुछ फर्क? लगा किसको किसको लगा, हाथ उठाओ, कुछ फर्क लगा? थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं लगा, थोड़े लोगों को तो लगा ना। देखो भी थोड़ा ही, आप देखो अच्छे से करना, कुछ तो फर्क है, भले 0.1% का है परंतु उसमें फर्क है। तो कहने का भाव क्या है, दिस इज, ये तो मैंने इसलिए कराया कि मैं सांस के बारे में, और क्यों, क्योंकि सांस है ना वो माइंड का तुरंत रिफ्लेक्शन है। आप देखना, आप गुस्से में आएंगे सांस बदल जाएगा, शांत होंगे सांस बदल जाएगा, जलसी आएगी सांस बदल जाएगा। ये तो एक एस्पेक्ट, लेकिन अवेयरनेस का मतलब है सब कुछ। अभी मैं खड़ा हूं तो कौन से पेड़ पे ज्यादा वजन है वो मुझे अवेयर होना चाहिए। कई बार पहले मुझे भी पता है, मैं बोलता था दो दो घंटे खड़े होके, यहां पैर में दर्द हो जाता था क्योंकि एक पैर पे ही प्रेशर दे के बोलते थे। फिर किसने बोला नहीं नहीं ये तो गलत है कि बीच बीच में चेंज करो आपके पैर का प्रेशर। तो दिस इज अवेयरनेस, तो उसको बहुत, ये तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, आपको पूरे एक दिन का सेमिनार कर सकते कि कैसे अवेयरनेस को बढ़ाना है। अच्छा, तो क्या है डॉक्टर अला, ALA। अच्छा, अब जब भी क्राइसिस आती है तो दो रिस्पॉन्स पॉसिबल है, देख रहे हैं ना, अच्छे से देखिए। हाँ क्राइसिस आई, ये क्राइसिस है, तो एक तो आप उससे डर सकते हैं, है ना, उससे घबरा सकते, नर्वस हो सकते, और दूसरा है उसको चैलेंज के रूप में ले सकते, है ना। जब भी आप डरते हो घबराते हो तो उल्टा आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते, निर्णय नहीं ले पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे ठीक से, उल्टा कदम ले लेंगे। परंतु जब आप उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी अनेक गुना बढ़ जाती है और आप सही निर्णय ले पाते हैं, सही रूप से उसको मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लो, अर्थात चुनौती के रूप में स्वीकार करो। जब भी चुनौती आती है हम सबकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम सब ने सुना है कि भी मां शेर के मुंह से बच्चे को बचा के ले आई, स्वप्न में भी शेर आएगा तो घबरा जाएगी, परंतु जब रियलिटी में आया तो उसमें ताकत आ गई क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन थी। बस एक छोटा सा फर्क लाना है, क्यों ना डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि सवेरे जल्दी उठना है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर आ गया, असिस्टेंट बरोबर काम नहीं करता है, बॉस थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिमांडिंग है, तो उन सबको चैलेंज के रूप में क्यों न ले ना? और चैलेंज के रूप में लेना हो तो ये तीन एफ याद रखो, डायरी पेन है तो लिखो भी, ये तीन एफ है, फेस इट, फुलफिल इट एंड बिकम फ्री। क्या? बोलो, ऐसे नहीं, जोर से हाथ को ऐसे करो, हाँ सभी सभी आए, हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, हवा में जोरदार मुक्का मारना है, बाजू वाले को नहीं मारना, वो जब तक सब जोर से नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ सारे कॉम्प्लेक्स में तो आवाज जाना चाहिए ना, फेस इट, फुलफिल इट, बिकम फ्री। हाँ बोलो फिर से, फेस इट, फुलफिल इट, बिकम फ्री। देखो ऐसे भी करने का, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ फेस इट, फुलफिल इट, बिकम फ्री, यस यस यस। हाँ करो करो, हाँ सभी करो, लगा ना अच्छा कि भी जब भी क्राइसिस आता है फेस कर, उसको फुलफिल कर, वो कुछ डिमांड लेके आया है क्राइसिस, है ना, एंड यू विल बिकम फ्री। हाँ एक बहुत अच्छे ऑथर, अभी मुझे नाम याद है, थोड़ी देर में नाम याद आ जाएगा मुझे, हाँ लुईसी हे इज अ वेरी फेमस ऑथर, शी इज ऑलमोस्ट 84-85 ईयर्स ओल्ड, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, हील योर सेल्फ, करोड़ों किताबें उनकी बिकी है। लुईसी हे लिखती है कि मैंने एक इंग्लिश व्यक्ति से शादी की, ये सोच के शादी की कि एक होम मेकर के रूप में सारा जीवन बिता दूंगी, और मेरा हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक आके मेरे पति ने कहा कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो, मेरे लिए तो मृत्यु ही था कि भी पृथ्वी जगह दे दे तो मैं उसमें समा जाऊं, कि मेरी क्या गलती है ना, अभी मैं क्या करूंगी। तो जब ये उसने कहा कि सीरियस क्राइसिस आई, तब कोई रास्ता नहीं था, अभी तो जीवन का निर्वाह करना था, तो मैं सोचने लगी कि क्या करूं। तो थोड़ा कुछ पढ़ा, मैंने सोचा लिखूं, तो मैं लिखने लगी, मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर बन गई, है ना, फिर तो मैं लिखती गई, है ना, आज वंडरफुल। श्री सचिन सेलिब्रिटी इंडिया में आती है ना, तो लोगों को हाथ पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, उतने लोग उनको मिलने आते। तो इसलिए ये क्राइसिस में, क्योंकि उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया, है ना, तभी काम रही। कोई डिप्रेस्ड हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा कि अभी क्या जीवन जीना है, और क्योंकि काम रही, उनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी वो सोचा। तो आज 84-85 ईयर्स में भी वो लिखती है, उनका अपना पब्लिशिंग हाउस है एक्चुअली। तो ऐसे कितनी बड़ा क्राइसिस आ जाए, यह सोच लो कि वह कुछ अच्छे के लिए ही आया है। राजेश भाई ने बताया मेरे बाल झड़ गए, अभी मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूं। ये तो हुआ कि ये सीनियर डॉक्टर है, बहुत पेशेंट आने लगे, फिर और 5-10 साल में देखा कि बस झपका होता है ना, साइड के बाल और ऊपर में 87 बाल। आपका जी कैसे मालूम पड़ा? एक बार मैं बाल कटवाने के लिए गया, तो वो नाई था ना, वो काउंट कर रहा 1-2-3। मैंने भी इंजॉय किया, उसने भी इंजॉय किया। 87 बाल। फिर मैंने सोचा क्या करें, मैंने बहुतों को देखा, कि फिर मैंने ये सोचा कि देखो आज ये सन्यासी तो मुंडन करते हैं ना, मैं भी तो स्पिरिचुअल काम कर रहा हूं, तो ना मैं शेव करने लगा, और उसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ मालूम है? आज क्लिनिक में भी बड़े बड़े लोग आके मेरे पैर छूते हैं कि भी ये कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है। तो मैं सोचता हूं अच्छा किया, एक तो भी कंगी खत्म कुछ जरूरत नहीं है, और दूसरा हम स्पिरिचुअल तो हाई, ऑलरेडी वी आर स्पिरिचुअल। तो ऐसे क्राइसिस को आप एक स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते, उससे अल्टीमेटली आपको फायदा हो सकता है। अच्छा आप करना क्या है, देखो भी प्रैक्टिकल अगर टेक्निक्स को सीख, आप कहेंगे कि इजी नहीं है ऐसे काम रहना, तभी क्या होता है कि भी जब भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो अधिकतर हम क्या करते, कंप्लेन करते ना। दूसरों के बारे में कंप्लेन करते, बच्चों के बारे में कंप्लेन करते, मां बाप के बारे में कंप्लेन करते, इंप्लॉयर के बारे में कंप्लेन करते, नेचर के बारे में कंप्लेन करते, भगवान के बारे में भी कंप्लेन करते। परंतु कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। क्या करो, जो आपके कंट्रोल में है, है ना, सचमुच करना। मैं आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स बता रहा हूं। जब भी क्राइसिस आए, सपोज हार्ट अटैक आ गया, तो डिप्रेस नहीं होना है, डरना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है। ये सोचो मेरे कंट्रोल में क्या क्या है। और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो सकती है ना। अधिकतर हम वो सोचते नहीं, हमें औरों को ही ब्लेम करते। अगर आप सोचो तो आपके कंट्रोल में बहुत होता है। कि एक्सरसाइज करना आपके कंट्रोल में है ना, मेडिटेशन करना आपके कंट्रोल में है, 10 लोगों को फोन करना आपके कंट्रोल में है। हाँ, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है, तो आप करेंगे तो देखना उल्टा फायदा होगा। मेरे एक मित्र है बंबई में, उनका एक पार्टनर, बहुत समय पहले की बात है, करोड़ रुपए से ज्यादा लेके भाग गया। तब तो करोड़ रुपया बहुत ज्यादा पैसा था, तो एक बार तो बेचारे डिप्रेस्ड हो गए, उनको हार्ट में ब्लॉक्स भी हो गए। लेकिन फिर सोचा कि अभी मेरे कंट्रोल में क्या है वो मुझे करना चाहिए, है ना, कहीं जगह पर जाने लगे। फिर देखा कि बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में है, है ना, योगा करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, उस व्यक्ति को माफ कर दिया, बहुत कुछ किया। और थोड़े समय में तो उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि बिजनेस अपने बेटे को दे दिया और आज यही काम कर रहे कि लोगों को योग सिखाते, एक्सरसाइज सिखाते, एक्यूपंक्चर सिखाते। वो कहते भी अच्छा हुआ, ये प्रॉब्लम आया तो ये सब चीजें मैं सीखा और आज हजारों लोग मेरे कारण बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे थिंक व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल। तो क्या होगा, ये जो फील्ड अगर आप अभी इसमें देखेंगे ना, कि भी फील्ड ऑफ कंप्लेन इज वेरी बिग, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कम होता है। और अगर आप वो जो आपके कंट्रोल में वो करने लगेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो ऐसे होगा कि फील्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा और कंप्लेन कम हो जाएगा। ठीक है, सब करेंगे, हाँ या ना, जोर से बोलने का, जो लोग सो गए ना उनको जगाने के लिए, ऐसे तो जगा नहीं सकते ना। ओके, अब जब क्राइसिस आए तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर उसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम वर्तमान में जीते ही नहीं, या तो आप भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, कि दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। वर्तमान में जीना तो यह याद रखो कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। दिव्या बहन आपको छोटी सी भी गिफ्ट दे तो आप उनका शुक्रिया मानेंगे। तो ऐसे ही वर्तमान जो भी है उसको परमात्मा की एक सौगात समझो। आप सबने भी सुना है, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, और वर्तमान, बोलो जोर से, वर्तमान। बस जब भी क्राइसिस आएगा सोचते हैं कभी सब कुछ गया, परंतु वर्तमान मेरा है, बस वर्तमान में जीना। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, कहते पास्ट इज एक्सपीरियंस, भूतकाल में जो हुआ वो अनुभव हुआ है ना। फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन, भविष्य से हम डरते हैं, नर्वस होते हैं, चिंता करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन है। पर प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट, अभी जो कर रहे हैं वह एक प्रयोग कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो ये भी एक प्रयोग कर रहे हैं कि इससे कुछ अच्छी बात मिल जाएगी हमें ना। तो जो भी प्रेजेंट में कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है। अभी हमें करना क्या है कि भूतकाल का अनुभव वर्तमान के प्रयोग में यूज करो, ताकि भविष्य की आशाएं सत्य हो जाए। समझ गए कि बस ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में क्यों जीना है? किसके घर में जाओ और आपको 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर दे तो आप क्या बोलेंगे, आज का पेपर नहीं है? Isn't it? तो देखो, हमको पुराना न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो जीवन की भी पुरानी बातों को क्यों सोच रहे? कि अभी जो है उसके बारे में वर्तमान में ही मुझे जीना है, बस हर पल एक्चुअली को सचमुच प्रयोग करके देखना। यहां पर तभी फ्री हो ना, सब कुछ काम तो नहीं, तो देखो ये प्रयोग करके देखना अभी से। कल सवेरे आप यहां अमृत वेले आओ, उससे पहले 1008 बार अपने आप को ये प्रश्न पूछना। हाँ, सिंपल है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उसका आनंद ले रहा हूं। जैसे अभी मैं सुन रहा हूं तो सुनने का आनंद ले रहा हूं, यहां से उठेंगे मैं चल रहा हूं, चलने का आनंद ले रहा, एक पैर को उठाया इसका मैंने आनंद लिया। फिर और कुछ करेंगे, खाने पे जाएंगे, खाने का आनंद ले रहा हूं। देखना आप 1008 बार करके देखना, बहुत अच्छा अनुभव होगा। क्राइसिस को वही मैनेज कर पाता है जिसका स्वमान अच्छा है। आज जो प्रॉब्लम आते हैं ना, कई बार देखो ना तो हमारे पास लोग आते एकदम पैनिक अटैक के साथ आते हैं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। जब गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि भी इसमें ना स्वमान की ही कमी है, एक्सटर्नल बातें कोई इतनी सीरियस नहीं है। अब करोड़ रुपए का प्रश्न है कि स्वमान को बढ़ाए कैसे। अब बहुत सारी युक्तियां हो सकती है कि भूतकाल में क्या आपने क्या अच्छा अच्छा किया उसको याद करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ ताकि आपका स्वमान बढ़े, लेकिन इन सबसे ज्यादा नहीं बढ़ता है। एक्चुअली स्वमान को बढ़ाना है तो उसका एसेंस ही समझ लो। क्या बोला? स्वमान। ये तो नहीं बोला पैसे का मान, पोस्ट का मान, बोला स्वमान बोला ना। तो स्व कौन है, आप कौन है? नहीं मालूम? अरे बाप रे, 2 दिन से क्या हो रहा है, पक्का है ना? देखो ये बात की आज बड़े बड़े साइंटिस्ट ये रियलाइज करने लगे हैं कि हम अपने विचार नहीं है, हम वह शक्ति है जो विचार निर्माण करती है। कहते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ऑकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विथ ऑकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एसेंस हमारा स्पिरिचुअल है, भल आज हम वो भूल गए। तो ये भी पक्का करो कि मैं वह स्पिरिचुअल एनर्जी हूं और स्वमान उसी का है, और कोई चीज तो वह तो और अदर्स आर नीड्स, है ना? हमारी पोस्ट पोजीशन, घर, ये शरीर, ये सब तो सिर्फ साधन है, उसका कोई मान नहीं है। देखो आपके पास अच्छी सी मर्सिडीज गाड़ी भी है और एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब हो गई, परंतु आप एकदम बच गए, आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, तो क्या सोचेंगे? हाँ, खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे ना, कि बोले गाड़ी खराब हुई परंतु मुझे जरा भी नहीं लगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, मैं मर भी जाता, तो आप हैप्पी होंगे उल्टा। तो बस ऐसे ही कि और सब चीजें तो बाहर है, शरीर बीमारी हुई और कुछ हुआ, बिजनेस में आगे पीछे हो गया, किसने कुछ बोल दिया, परंतु जो कोर मैं आत्मा हूं, अगर मैं सदैव स्वस्थ हूं, मैं सदैव शांत हूं, आनंद स्वरूप हूं, तो कुछ नहीं चाहिए, है ना? उसी से मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और इसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये स्टेज को लाने के लिए, है ना, पैसे की जरूरत नहीं है, बिजनेस की जरूरत नहीं है, प्रमोशन की जरूरत नहीं है। तो बस स्वमान तब आएगा जब यह जो एसेंस यहां भी आपको बताया जाता है, वह एसेंस को पक्का करो। अब ये जो इमोशन क्राइसिस में अधिकतर है ना, इमोशंस आते हैं। कहते इमोशन इज डिराइव फ्रॉम इमूवर, जिसका अर्थ है एनर्जी इन मोशन। और इमोशंस को है ना सही रूप से मैनेज करना है। सही रूप से मैनेज करेंगे तो वह डिवोशन बन जाएगा, सही रूप से मैनेज नहीं करते हैं तो वह कमोशन बन जाता है। और कैसे इमोशन को मैनेज करना है, एक तो ये पक्का कर लो। ये आज भी एक सेशन में मुझे पूछ रहे थे कि भी ब्रह्मा कुमारीज में आके आपको क्या फायदा हुआ, तो मैंने कहा कि बस यहां आके मुझे एक यही फायदा हुआ कि हर चीज में मैं पॉजिटिव बन गया। और सब कुछ हर बात में कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अब बहुत सारा आपने भी सुना होगा, परंतु एक ना एक बिलीफ सिस्टम के रूप में पक्का कर दू। मैं आपको 2 घंटा लेक्चर दे सकता हूं कि जो कुछ भी होता है उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। तो कभी का आपको एक उदाहरण बताता हूं ना, मेरे 2 क्लिनिक है, एक अंधेरी में, एक बोरीवली में है ना, बोरीवली में रेसिडेंशियल एरिया में, देवीदास रोड पे एक धर्माजी ठाकुर अपार्टमेंट। एक्चुअली डॉक्टर रेसिडेंशियल एरिया में क्लिनिक चला सकता है ना, लीगली दे कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर भी इस बार एजीएम में बहुत कुछ उन्होंने सुनाया कि ये तकलीफ होती है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इधर से खाली करो तुम। एंड आई थॉट इतने सारे नेगेटिव वाइब्रेशन है, उससे अच्छा इसको चेंज कर दें। वेल वो एक बार आया, जब ये सारा हुआ तो शायद 2 मिनट चला, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो होगा कुछ अच्छा ही होगा। फिर बस 2-4 घंटे में जैसे मैंने जो ना व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल था ना, वो सोचा कि अपने कंट्रोल में क्या क्या है, नहीं अभी ऑप्शंस क्या क्या है, तो उल्टा तो मैं खुश हो गया, क्योंकि वो जो क्लिनिक है ना प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। जब हम वहां आए तब उसको प्रॉपरली प्लान नहीं, मैंने सोचा अच्छा है चलो 10 लाख ज्यादा लगेंगे, इससे बड़ी जगह में जाएंगे, प्रॉपरली डिजाइन करेंगे। तो उल्टा 2 दिन के बाद जाके कमिटी को मैंने बोला थैंक यू, आपने अच्छा किया कि भी नहीं तो अब मुझे सोचना ही नहीं था भी, वो जगह अच्छी है, 3rd फ्लोर पे है, सीन सारे अच्छे हैं, लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, तो भी अभी अच्छा होगा कुछ कटिंग। तो बस ऐसे जो भी प्रॉब्लम आए ये सोचो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होना है। हाँ, और भी मैं आपको 1-2 उदाहरण बताऊंगा, है ना, पर्सनल एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि दे आर रियल भी, और किसके देते हैं तो और किसके साथ हुआ हमको क्या पता ना, दीज आर एग्जाम्पल्स विच इज रियली हैपन टू अस, और स्टेबल रहने से कितना अच्छा हुआ कि विद समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन इन अवर लाइफ। अभी चाहिए राइट एटीट्यूड, कुछ भी हो जाए कितना हो, आप एटीट्यूड को राइट करो। और एटीट्यूड क्या है, वो एटीट्यूड नहीं है, जब भी एटीट्यूड बोलते हैं ना तो अभी पता नहीं ये शब्द कहां से आया मुझे, वो एटीट्यूड दिखाता है, मतलब वो ईगो, वो वाला एटीट्यूड नहीं। साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब है एंगल, दृष्टिकोण, कि कौन से एंगल से, जैसे आप मुझे यहां से देख रहे तो अलग, कोई मुझे पीछे से देखे तो मैं अलग दिखूंगा, तो सिर्फ वो एंगल चेंज हुआ। तो ऐसे जब भी क्राइसिस आए सिर्फ एंगल को चेंज करो आप, है ना, तो आपको कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा कि इससे कुछ सीखने को मिला। चलो प्रॉब्लम आ गया परंतु ये प्रॉब्लम से कुछ सीखने को मिला भी, कुछ हुआ शायद हम कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करते, समस्या आई तो भी हम अपने आप को चेंज करेंगे। तो ऐसे वो सिचुएशन आपको बस कोशिश करनी है, और है ना प्रैक्टिकली करना है। हम लोग क्लिनिक में कराते हैं, पेशेंट को कहते हैं यहां परिस्थिति को रख दो, लिखो एक पेपर पे लिखो कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स है ना, कि भी मेरे पति मेरे से नाराज है ना, समझो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अभी वो एंगल को देखो, फिर अभी यहां से देखो कैसे, यहां से देखो, यहां से देखो, तो आपको मिल जाएगा। और कई बार तो चीजें बड़ी सिंपल सी होती है। एक बहन आके रोने लगी कि मेरे पति मेरे से नाराज है। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा अरे मैं उसको इतना अच्छा खाना बना के देती हूं, इतना उनका ख्याल रखती हूं, अच्छा अच्छा खाना बना के देती हूं, फिर भी गुस्सा करते हैं, बोलते तुम्हारे कारण मैं मोटा हो रहा हूं। तो मैंने कहा इसको कैच करो तुम कि भाई उसको सादा खाना चाहिए, उसको वेट कम करना है ना। उनको मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया, उसके गले उतर गया वो। मैंने कहा देखो कि भी किसको प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए, तुम दूध दोगे तो भी व्यक्ति खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पानी चाहिए। तो आपके पति को सिंपल खाना चाहिए ताकि वो अपना वेट कम कर सके, ये चटपटा खाना नहीं चाहिए, है ना। तो यहां आपकी मिस्टेक है, और उल्टा आपके लिए तो अच्छा है, सिंपल खाना जल्दी बन जाएगा। तो इस प्रकार समझ रहे मेरी बात, दिस इज वन, आपका एग्जाम्पल एंटायरली डिफरेंट हो सकता है ना, योर सिचुएशन में भी एंटायरली डिफरेंट। से योर बॉस इज हाईली डिमांडिंग, तो भी एटीट्यूड को चेंज करो। जैसे ना हमारे एक भाई थे जगदीश चंद्र हसीजा, वो ऐसे डिमांडिंग थे मत पूछो, उनके साथ काम करना आप सो नहीं सकते। हमने उनके साथ 3-4 कॉन्फ्रेंसेस की है, वो खुद भी काम करेंगे, शायद मेरे से 20 साल बड़े थे, खुद भी रात दिन काम करेंगे काम। तो मुझे आज भी याद आता है कि भाई उनके साथ काम किया तो आज हम रात दिन भी काम कर सकते। ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट, लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, परंतु एटीट्यूड से ही आया। मुझे भी तब लगता था कि इनसे सीख रहे हैं हम, और आज तो और भी अच्छा लगता है कि भाई उनके साथ काम किया तो आज किसके भी साथ काम कर सकते। तो लाइक दैट वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ सिचुएशन, है ना। तो राइट एटीट्यूड को धारण करो, एंड एटीट्यूड इज पावरफुल। ये तो मैंने जनरल एग्जाम्पल्स दिए, परंतु एक प्रयोग हुए हैं कि जिनको आंखों का पर्दा ना फट जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। डायबिटीज के पेशेंट को और कहीं को अचानक ब्लाइंडनेस आ जाती है, अभी बैठे हैं बोले दिख नहीं रहा है मुझे कि पर्दा फट गया। तो एक डॉक्टर ने पूरा स्टडी किया कि जैसे ये जिनका रेटाइनल डिटैचमेंट होता था, उनमें भी जिनका पॉजिटिव अप्रोच था, जो लोग काम थे वो जल्दी अच्छे हो जाते थे, जो नर्वस हो जाते थे, जो पैनिक हो जाते थे, वो अच्छे नहीं होते थे, परमानेंट उनकी आईसाइट चली जाती थी। परंतु जो लोग पीसफुल रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, तो वापस उनकी आंखें रोशनी वापस भी आ जाती थी। समझ रहे, तो मैसेज क्या है, एग्जाम्पल का मैसेज क्या, कि भी हर स्थिति में काम रहो, जैसे ना काम इन क्राइसिस, कि कुछ भी हो जाए माइंड पीसफुल होगा, स्टेबल होगा, तो ही अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वो मानसिक तकलीफ है या शारीरिक तकलीफ हो। अभी राइट थॉट्स, है ना, विचार सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि वी ग्रेविटेट इन द डिरेक्शन ऑफ अवर डोमिनेंट थॉट्स। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, किनारे खुद व खुद मिल जाएंगे। बात क्या है, सोच का डायरेक्शन बदलना है। ये भी रियल एग्जाम्पल है, एक पेशेंट ने मुझे बताया। उसने कहा कि एक बार मैं प्लेन में आ रही थी और अचानक, कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं, अचानक जूम प्लेन नीचे गया, लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, और 30-35 सेकेंड के बाद एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, शांत हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। बस लोग शांत हो, कहते प्लेन ऊपर आने लगा। स्विस इट्स रियल, हमेशा होता है कि नहीं पता नहीं, बट द पॉइंट हियर इज भी काम रहने में ही फायदा है। बस हम भी सीखे, औरों को भी आपके आसपास में जो लोग भी है सबको ये सिखाओ कि कितनी ना बड़ी समस्या है, आसमान भी टूट पड़े हम कूल रहेंगे तो एनर्जी से काम कर सकेंगे। वो जो डिजास्टर है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए शक्ति चाहिए। आप नर्वस होंगे तो उल्टा तो शक्ति चली जाएगी आपकी। अभी थॉट्स तो एक सीखे, फिर भी राइट थॉट्स, राइट थिंकिंग क्या है कि परिस्थिति जैसी है वैसी देखो। अगर 20% प्रॉब्लम है तो 80% नहीं करूं। और कई बार अलग अलग तरीके हैं कि जिससे हम रॉन्ग थिंकिंग करते। आज तो टाइम नहीं है, कभी आपको बताऊंगा कि 12 डिफरेंट वेज कि जिसको साइकोलॉजी में नाम भी दिए गए, जैसे कि मैग्निफाइंग, जनरलाइजिंग, जंपिंग ऑन कंक्लूजन, ऑल और नन अप्रोच, फ्लाई मेंटेलिटी, ऐसे सबको अलग अलग नाम दिए कि हम रॉन्ग थिंकिंग कैसे करते हो। और ये जानना इसलिए अच्छा है, वो 12 चीजें आप जान लो तो आपको पता चलेगा मैंने रॉन्ग थिंकिंग कहां किया, अभी राइट कैसे करना चाहिए। अब हर एज भी सब बोल रहा हूं ना, अच्छा लगता है हा या ना? अच्छा, थोड़े लोगों को तो लग रहा है कि ये सब क्या है कि भी सोचना प्रारंभ करो, है ना, स्टार्ट थिंकिंग। कि भी आप नहीं सोचेंगे, कहते कि जो लोग सोचने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं उनको पछताने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है ना। तो इसलिए अभी से सोचने का टाइम निकालो, विस्डम ग्रहण करने का टाइम निकालो ताकि प्रायश्चित नहीं करना पड़े। अब देखो, ये बहुत पावरफुल चीज है। क्राइसिस में कूल रहना है तो यह याद रखिए कि कभी एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान कहीं ना कहीं एक छोटी सी तो खिड़की खोलता है। वो बंद दरवाजे को नहीं देखे रहो, जो खिड़की खुली है उसको देखो। और कई बार तो एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान चार दरवाजे खोल देता है, परंतु हम उसी बंद दरवाजे को देख देख करके डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। तो बस ऑलवेज जब भी क्राइसिस आए कि उसको नहीं देखना है, और कुछ अच्छा हो सकता है मेरे जीवन में, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। भी मन ही कहेंगे कि बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति का कारण भी बन सकता है। बस अभी मन का सही उपयोग करने लगना है। यहां इन 3 दिनों में कॉन्फ्रेंस में भी यही आपको समझाने हम जा रहे हैं कि कैसे मन का सही उपयोग करो ताकि वह मन मुक्ति का कारण बन जाए। हाँ, सही उपयोग करना सीखना है। बोलते नहीं है मतलब कैसे क्या? देखो, मैं फ्री में सिखा रहा हूं, मेरी फीस बहुत है। यहां कोई मेरे पेशेंट है? हाँ, 1 घंटे का 150 रुपया, अरे सॉरी 1500 रुपया। और वो एडमिशन दे, क्या कहेंगे कि वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती? अभी फोन करके देखना, आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, बोलेंगे 6 दिन के बाद, और 1500 रुपया देना 1 घंटे का। अभी तो फ्री में दे रहा हूं ना। हाँ, तो जवाब तो दो। अच्छा, ओके, ऐसे ही बोला, फीस नहीं चाहिए आपसे, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा। हाँ, नहीं दे रहे रिस्पॉन्स दो, ओके। हाँ, तो बात क्या थी सारी? देखो ना, क्रक्स सिखाता हूं आपको कि माइंड से मुक्ति कैसे प्राप्त करो। आध्यात्मिक नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ साइकोलॉजी। देखो, अभी ये मेरा ड्रेस देख के आप सब सोच रहे हैं कि कोट पहन के क्यों नहीं आए, तो डॉक्टर है ना। परंतु कैमरा सोच रहा है? कैमरा नहीं सोच रहा है, कैमरा तो जैसा है वैसा फोटो ले रहा है। तो बस ऐसे ही जब जब भी पॉसिबल हो, सचमुच आप देखना, सारे दिन में 50% से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसे बैठा है, उसने कैसे कपड़े पहने, वो क्या खा रहा है, उसके घर में फर्नीचर क्या है, वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, परंतु हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, इज़न्ट इट? तो क्या करना है, देखो ये प्रैक्टिकल चीज है कि आंखें कैमरे का काम करें, बस जैसा है वैसा देखो। भी कोई मोटा है नहीं है, मोटा कैसे हो गया, वेट कम करना नहीं आता है क्या? अरे भैया मोटा है, कोई भी कारण होगा, क्या बात है ना। आप सोचो नहीं हर बात में, अभी भी डायरी पेन है तो लिखो, आंखें कैमरे का काम करे, कान रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, जैसा सुना वैसा सुना, जीभ हाथ सेंसर का काम करे। देखो आप घर जाएंगे, पत्नी ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया है, तो क्या क्या सोचने लगते कि मैंने इससे शादी करके गलती कर दी। भैया नमक कम है, शादी कहां से लाए आप? ये भी कोई कारण होगा कि भी नमक कम है, आज ये बोल दो चाहिए तो। समझ गए मेरी बात? वैसे लिखना, देखो आंखें क्या करे, कान रिकॉर्डिंग मशीन का, जीभ हाथ वगैरह सेंसर का काम करे, तो आप देखना आपके थॉट्स कम हो जाएंगे, और जब थॉट्स कम होंगे ना तो पावर आएगी। विचारों में भी शक्ति है, हम सब ने सुना है ना, पावर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन उससे भी 10 गुना पावर है जो विचारों के बीच में फासला होता है, गैप होता है, वो गैप में शक्ति है। परंतु हम वो बीच में गैप लाते ही नहीं, एक के बाद सोचते रहते। बंबई की सबर्बन ट्रेन जैसा है, एक ट्रेन बोरीवली जा रही है, एक चर्च गेट जा रही है, एक वहीं खड़ी है। तो हमारे भी विचार कल कई सारे चल रहे हैं। जितना कम सोचेंगे ऊर्जा की बचत होगी, सचमुच आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी, जो रियल पावर, या तो भी कहें कि जो रियल सुख शांति, वो आत्मा की गहराई में है। वो तब आता है कि जब आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करना। अभी भी सब कुछ चला जाए, है ना, परंतु होप ना जाए। और होप का अर्थ क्या है पढ़ो, होल्ड ऑन पेन एंड, वैसे पक्का करो। जब भी क्राइसिस आए क्या आप सोचेंगे, होल्ड ऑन पेन एंड्स। फिर है कैन डू एटीट्यूड ना, आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। ये बहुत कुछ बताते हैं तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये सब थियरी में तो अच्छा है परंतु प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? इम्पॉसिबल का स्पेलिंग आई एम पॉसिबल। सुना है ना, सुने सबने? हाँ देखो करेंगे, हाथ कैसे करो, सभी करो। मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल तो आपको बोलना आई एम पॉसिबल, हाँ जोर से, हाँ इम्पॉसिबल, नहीं अभी जोर से नहीं बोल रहे, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। बस जब भी आए ना कुछ को लगे ना इम्पॉसिबल तो सोचने का आई एम पॉसिबल, यस यस यस। एक्यूप्रेशर भी मिल जाएगा और शक्ति आ जाएगी आप में। नाउ व्हाट यू नीड इज बेटर जजमेंट, है ना। तब भी क्राइसिस आ जाए ना जज करना होता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो पहला तो थंब रूल मैं आपको कहूंगा कि क्राइसिस आ जाए तो ना टॉपिक बहुत अच्छा है। हमारी कविता बेन ने टॉपिक चुना तो पहले तो मुझे लगा क्या टॉपिक दे दिया मुझे, अभी फिर लगा बहुत अच्छा टॉपिक है कि भी सबसे पहला है कीप कूल, क्योंकि तो ही मैं सब कुछ बेटर जजमेंट ले पाऊंगा। दूसरा, जैसे ही क्राइसिस आए ना हो सके तो रिलैक्स करो कि अभी मुझे सही निर्णय करना, नेगेटिव नहीं सोचना, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो अभी भी मैंने सोचा नहीं था, अभी याद आ रहा है, एक दिन है ना, मेरे फादर कोई मिल में काम करते थे ना, छोटा सा उनका अकाउंट का काम था, लेकिन शायद बॉस बहुत ही वो डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो एक दिन रेजिग्नेशन दे के आ गए। सिर्फ मैं तो बहुत छोटा था, परंतु आज हम सोचते हैं कि भी अच्छा हुआ वो रेजिग्नेशन दे के आ गए। नहीं आते ना तो शायद कुछ नहीं होता, परंतु रेजिग्नेशन दे के आ गए तो मेरा सबसे बड़ा भाई वो थोड़ा मेंटली सब नॉर्मल था, तो उसके लिए वो सोचने लगे कि क्या करूं। तो ना उन्होंने सिलाई का काम उसको सिखाया, और फिर खुद ने आइडिया ढूंढी कि पैंट पीस है ना, कटिंग्स में बहुत सस्ते में मिलते थे, इतने छोटे छोटे पीसेस होते थे, लेकिन उन्होंने क्रिएटिव आइडिया ढूंढी कि जब पैंट पता बनाओ ना तो मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे छोटे छोटे पीस है लेकिन वो कट कर रहे तो मालूम नहीं पड़ता है। और सचमुच यहां अभी बॉम्बे से आप में कहीं होंगे, उन्होंने क्या मालूम पता है, बॉम्बे के जो मोटरमैन और गार्ड है ना, मिस्टर मोदी एक उनके पहचान वाले थे, तो उनको कहा कि मेरी थोड़ी पहचान करा दो, जो आपके और मोटरमैन और गार्ड है ना उनको जाके कन्विंस करते थे कि देखो ये पैंट 200 रुपये में मिलता है ना, मैं तुमको 100 रुपये में दूंगा, और वैसा का वैसा ही है। आज उन्होंने सोचा तो मेरे और भाई लोग तो बहुत बड़े बन गए, आज करोड़ों रुपया मेरे से भी ज्यादा कमा रहे, क्योंकि एक उनको लाइन मिली। तो ऐसे क्राइसिस में डिस्टर्ब नहीं होना है, बस क्या करो, बेटर जजमेंट करो, ठीक है, ओके। हाँ, अब है सेल्फ डिसिप्लिन। छोटी छोटी बातों में भी बड़ी डिसिप्लिन नहीं, रोज उठते हैं उससे आप 20 मिनट जल्दी उठने लगो, दिक्कत है, खाते हैं उससे 5% कम खाओ, आधा घंटा साइलेंस में रहो, है ना, सारे दिन में आधा घंटा कुछ अच्छा पॉजिटिव मटेरियल पढ़ो, है ना, 15 मिनट एक्सरसाइज करो, आप देखना थोड़े ही समय में आप डिफिकल्ट काम करने लगेंगे, अल्टीमेटली आप इम्पॉसिबल करेंगे। आज मैंने बोला ना, मेरे भाई लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से हुआ। तो ऐसे बेटर जजमेंट करना है, सेल्फ डिसिप्लिन रखनी है अपने को। देन अल्टीमेट इज कि सचमुच आपको क्राइसिस में कूल रहना है एंड फॉर एवर, तो व्हाट यू नीड इज अ गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वह है कि जब कोई नहीं देखता है तभी आप क्या करते हैं? अभी तो आप अच्छे से बैठे हैं, परंतु प्राइवेसी में अपने घर में कैसे बैठते वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा, या तो और कोई भी बात कि जब कोई और देख नहीं रहा है तब हम क्या करते हैं, तो बस ये सोचो कि भी कैरेक्टर एक तो बहुत बड़ी चीज तो क्या है, जैसे दिव्या बहन ने भी कहा था, पता चल जाते, झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, और कैरेक्टर अच्छा है ना तो अंदर से भी हम रिलैक्स है, पल कम कमा रहे हैं, लोगों से मैं रिस्पेक्ट कम मिल रहा है, परंतु अंदर से मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सुख है ना, ये सब कुछ क्यों कर रहे, सुख के लिए कर रहे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं आगे जा, देखो ये है मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी पूरा करता हूं, फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, कि आत्मा भल अणु जैसी है परंतु फिर भी वो अलग अलग लेवल पर काम करती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और अल्टीमेटली सुप्रा कॉन्शियस। सुप्रा कॉन्शियस ये आत्मा का सबसे गहराई का हिस्सा है, परंतु उसमें जबरदस्त शक्ति है ना, सुप्रा कॉन्शियस वो डीपेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें अनलिमिटेड माइंड पावर है, इज सुपर इंटेलिजेंट, हैज इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। तो फाइनली अगर कुछ करना है क्राइसिस में काम रहने के लिए तो सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है, और कैसे जागता है, जब आप ध्यान में टोटली अपनी सुधबुद्ध को खो देते, शुरू में नहीं होगा, नेचुरली आप करने लगेंगे मेडिटेशन, यहां पे भी एक बार हो जाएगा या थोड़े दिनों में हो जाएगा, जब भी आप टोटली उसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो सुप्रा कॉन्शियस जागता है। जब सुप्रा कॉन्शियस जागता है तब तो कोई विचार नहीं होता है, परंतु जब आप मूल स्थिति में आते, जब जो पहला विचार करते वही सुप्रा कॉन्शियस कैच कर देता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो अगर सबसे बड़ी बात को सीखनी हो, जो आज मैं भी कर रहा हूं, कि हमें यह सुप्रा कॉन्शियस को जगाना सीखना है। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सा तरीका है। तो चलो टाइम भी हुआ है, बस थोड़ा समय हम सब मेडिटेशन करेंगे। थक तो नहीं गए ना, हाँ सब एक बार खड़े हो जाएंगे। अब देखो एक अच्छी सी आपको है ना, अभी यहीं कीपिंग कूल इन क्राइसिस एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है, इसको का ब्रेन जीन। आपने भी सुना होगा किसको राइट हाथ का पैरालिसिस हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे लेफ्ट ब्रेन को चोट लगी है, तुम्हारे कनेक्शन है ना उल्टा है। तो इसलिए कि आपको अगर ब्रेन को होलिस्टिकली यूज करना है तो दोनों को यूज करना पड़ेगा। हम अधिकतर लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं, राइट ब्रेन को यूज नहीं करते। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये ब्रेन जिम में आप दोनों ब्रेन को यूज करना सीखेंगे। हाँ, मेरे साथ करो, दो मिनट में हो जाए। इसे उल्टा करना है, हाथ को यहां ले जाना है। फिर ऐसे बचपन याद है जब मैंने देखा तो लगा अच्छा है, हाँ उनको भी इंट्यूटिवली कुछ हुआ होगा कि पनिशमेंट में राइट और ब्रेन को एक्टिव कर देते। दूसरा कहते ऐसे उल्टा करना है। पीछे भी है, पीछे लेके जाने ऐसे भी कि यस ओके। हाँ बैठिए, हाँ छोटा सा मैंने बोला थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाए ताकि आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। ये सिंपल सी टेक्निक है मेडिटेशन की, मेरे साथ साथ करना, देखना आपका अच्छा ध्यान लग जाएगा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जिसको कहा बलून एक्सपीरियंस। इस टेक्निक में जैसे कि हम बलून में ऊपर जा रहे हैं, उस सारी बात को मेडिटेशन के साथ जोड़ा है। ठीक है, अच्छा देखो हाथ को ऐसे रखिएगा, दोनों पैरों को जमीन पर थोड़ी दूरी पर, कंधे को ढीला रख कर दीजिए। बलराजियों का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप में से कहीं पहली बार करते होंगे तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। बस अपनी सांस की गति को फील करिए, सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ। जैसे ही सांस की गति को फील करते हो, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। ये सोचिए एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें पीले रंग के गर्म हवा के गुब्बारे में आप बैठे हैं, येलो हॉट एयर बलून में आप बैठे हैं। यह बलून आपको सुरक्षित ऊपर ले जाएगा, 5 फीट 10 फीट ऊपर जा रहा है। देखिए आसपास के हरे झाड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं, और यह बलून ऊपर जा रहा है तो नीचे के झाड़ छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। इसके लिए सोचिए कि मैं एक व्यक्ति नहीं शक्ति हूं, मैं एक दिव्य चेतना हूं। मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करे। जैसे ये भाव निर्माण होता है, हल्कापन लग रहा है, मैं एक दिव्य ज्योति हूं, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, परंतु उन सब कर्मेंद्रियों से परे मैं दिव्य चेतना हूं। जैसे भाव निर्माण होता है, हल्कापन लग रहा है, यह बलून और ऊपर जा रहा है, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है और ऊपर जा रहा है। देखो नीचे बादल दिखाई देते हैं, नीचे प्लेन जा रहे हैं, उसके भी ऊपर आप ये बलून में जा रहे हैं, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है। पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के उस पार चला गया है और आप एकदम वेटलेस हो गए। आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, आसपास में सितारे ही सितारे हैं, उनके मध्य से गुजरते हुए और ऊपर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूं, और ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ही जगमगता सितारा आपके नजदीक आ रहा है, बहुत ही जगमगता सितारा है। वो नजदीक आता है तो आपको पता चलता है कि तो यह तो एक ऊर्जा है, इससे शांति के कंपन निकल करके आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस सितारे से प्रेम के कंपन निकल के आप में समा रहे हैं। परमात्मा भी एक सितारे जैसे हैं, रूप में बिंदु परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परमपिता परमात्मा। इन ऊर्जा से मैं भरपूर हो रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन शांत हो रहा है, एकदम जैसे कोई और दुनिया में खो गया। ऐसे भरपूरता का अनुभव कर अब आप वापस नीचे आते हैं। जल्दी जल्दी नीचे आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, जल्दी नीचे आते परंतु एकदम अपनी मस्ती में मस्त, एकदम गहरी शांति में हो। जल्दी जल्दी नीचे आते हैं, फिर से नीचे के मकान दिखाई देते हैं, झाड़ दिखाई देते हैं, परंतु आप एकदम शांत हो, डिटैच हो, एकदम नीचे आ गए हो, परंतु इसी स्थिति को सदैव कायम रखोगे। धीरे से आंखें खोलिए, सोचिए, मैं आत्मा को ही देख रहा हूं, शरीर दिखाई ही नहीं देता है। बस शांत स्वरूप आत्मा को ही देख रहा हूं। और सदैव कर्म करते हुए भी, परिवार में, ऑफिस में, सभी को शांत स्वरूप आत्मा के रूप में ही देखूंगा। ओम शांत शांत। तो ये छोटा सा अभ्यास था। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? चलो पहाड़ी बैठे। अभी तो टाइम भी हुआ है, परंतु कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं। आप भूल जाने वाले 10 मिनट में तो 95%, परंतु जो रिपीट करते हैं वो 50% याद रहता है। तो क्या करना है? देखो, मैंने आपको बीच बीच में बोला था कि लिखो, है ना? शायद इसकी वो आपको देने वाले हैं ना, पेन ड्राइव। मैंने सुना कि बहुत अच्छा है, एक पेन ड्राइव में सब मटेरियल आ जाए, परंतु उसको रिपीट करो। जो हम रिपीट करते हैं वो 50% याद रहता है, जो औरों को सुनाते हैं वो 80% याद रहता है। तो क्या करना चाहिए? देखो, यहां से जाएंगे ना तो कम से कम 5 लोगों को सुनाना। और क्या होगा अभी से बता देता हूं, 5 में से एक आपको बोलेगा इसको ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया। दूसरा एक वहां देखेगा, लेकिन दूसरे 3 तो आपको सुनेंगे। उसमें से एक तो शायद बोलेगा कि अरे तुम तो भगवान के रूप में मेरे पास आ गए, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। तो अच्छा है ना? तो 5 को सुनाएंगे, हाँ या ना? वंडरफुल। और मेरा भी संपर्क करना हो तो फील फ्री, गूगल भगवान है ना, ना उसमें सब कुछ है। हाँ, नेट में खाली नाम याद रखो। और मेरी कुछ बुक्स भी शायद आपको कईयों ने ली भी होगी, बाहर भी मिलेगी। हाँ, 1-2 किताबें हैं कि उससे भी आप ये जो चीजें हैं वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी संपर्क करना हो तो भी आप कर पाएंगे, है ना, फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी। कोई भी समस्या हो तो जरूर संपर्क भी कर सकेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। हाँ, फ्री में, चलो आप लोगों के लिए, यहां पर आप सब बात करो, मैं आपको फ्री में दूंगा जी। अच्छा, चल बाद में, भाई खड़े हैं। इन पंक्तियों के द्वारा यहां पक्का, यहां फ्री में करेंगे। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। परंतु तो कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न स्टेशन न टिकट होती है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरीश भाई को सुन रहा था, वास्तव में ही वॉज गिविंग अस द ट्रीटमेंट। जो रिपीटेशंस करवाते थे, वास्तव में जो हम कर्म से बोलते हैं उसका इफेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर पड़ता है। इसीलिए उन्होंने 3 बातें हमको बहुत अच्छी बताई। कौन सी? रिपीट करें। 1 इज हाउ टू टेक क्राइसिस एज अ चैलेंज। सो फर्स्ट वॉज फेस इट। सो व्हाट ही डिड इज फेस इट, फुलफिल इट एंड बिकम फ्री। सो ये जो एक्शन करवाते थे वो एक्शन से सबकॉन्शियस लेवल पर उसका बहुत बहुत असर पड़ता है। सो इनडायरेक्टली बीइंग ए साइकाट्रिक ही वॉज गिविंग यू ए वेरी लवली ट्रीटमेंट विच यू वुड बी टेकिंग विथ यू। ब्रह्मा कुमारी की बहुत ही अच्छी टीचिंग्स मुझे हमेशा बहुत इफेक्ट करता है, मुझे बहुत गहराई से फील कराता है। टू रियलाइज एनीथिंग यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन रिविजन. सो जिसको रियलाइज करना है उसको रिवाइज करना है. तो जो भी इनकी बातें हैं उनको बार बार रिवाइज करने से आई एम वेरी श्योर माय लवली गेस्ट फ्रॉम बीएसटी, आरटीओस, एयर इंडियाज एंड ऑल दी अदर, आपके जीवन में, आपके कॉरपोरेट सेक्टर में, सर्विस क्षेत्र में कोई भी प्रकार का क्राइसिस होगा, व्हाट यू गोइंग टू से? यस, एंड यू कैन ऐड द फोर्थ वन ऑन योर ओन वे. थैंक यू वेरी मच गिरीश भाई, वंस अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. अगेन इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर एस एन चांडक. मे आई प्लीज वेलकम हिम ऑन द स्टेज. प्लीज मिस्टर चांडक, करतल ध्वनि से प्लीज उनका स्वागत करें. यस, थैंक यू वेरी मच. चांडक जी का एक संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगा. आप एमकॉम एलएलबी, सीए, आईआईबी और एक बहुत ही अच्छी विशेषता जो मैं जब भी मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा माय गुडनेस दैट्स अमेजिंग, ही डिड हिज पीएचडी एट द एज ऑफ 62. चांडक जी हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन दिल्ली के. आप चेयरमैन भी है शील बायोटेक के और आपने पेट्रॉन, हां सुनिए करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके पेट्रॉन मेंबर है, डेफ एंड डम की स्कूल है. तो हम चांडक जी से उनका अनुभव बहुत ही शॉर्ट समय में, चांडक जी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो 5 से 7 मिनट में हम उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को सुनेंगे. थैंक यू वेरी मच, ओवर टू चांडक जी.
ओम शांति. टाइम बहुत कम है और गिरीश भाई जैसे वक्ता के सामने जो एक व्यक्ति नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, मेरे को कुछ शेयर करने को कहा गया है, मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं. दोस्तों मैं पहली बार यहां आया हूं और अगर मैं यह कहूं कि पूरे देश के स्पिरिचुअल सेंटर्स में से अगर कोई स्वर्ग है तो ब्रह्म कुमारी में है. जैसा पिछले 3 दिन से हम अमृत वर्षा देख रहे हैं, गिरीश पटेल भाई सब अच्छे अच्छे वक्ताओं ने हमको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन दोस्तों होता क्या है, हम 3 दिन में खूब चार्ज हो गए और जैसा गिरीश पटेल भाई ने बताया कि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा. होता क्या है, हमारे जैसे 500 व्यक्ति हैं तो 200 लिखते हैं, 300 नहीं लिखते हैं, और जो 200 लिखते हैं वो भी ले जाके उस डायरी को अपने घर में रख देते हैं, दोबारा देखते ही नहीं. तो जो जितना ये जो आपने श्रम किया, यहां पधारे, यहां एंजॉय किया, आपने इतने सारे स्पीकर्स को सुना, उसका फायदा दोस्तों तब होगा जब हम यहां से कुछ लेके जाएंगे. और लेके जाने के लिए यह निर्णय आज ही आपको करना होगा कि कुछ नोट्स रात को ही होटल अपने कमरे में बना लें कि आपने 100 बातें सुनी हो, कम से कम 5-10 तो मैं अपने जीवन में लगा दूंगा. छोटा सा मैं एक्सपीरियंस अपना बताता हूं. आज दिन में क्रोध के बारे में बात हुई तो मैं काफी चिंतन करता रहता हूं. मेरे दिमाग में यह था बिन भय हो तन प्रीत. मेरे कंपनी में काफी लोग हैं तो मैं ऐसा सोचता था कि बिना डर के कोई प्रेम नहीं हो सकता है. और जैसा सुबह भी बात आया कि क्रोध करे बिना लोग मानते नहीं है, चेयरमैन को, मैनेजमेंट को कमजोर समझते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जैसे सामने भाई बैठे इन्होंने भी बताया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिना क्रोध के भी. जब हम इतना बड़ा मैनेजमेंट में देख रहा हूं, 3 दिन से मैं यहां स्टडी कर रहा हूं, 2000 आदमी सेवा कर रहे हैं बिना पिन ड्रॉप साइलेंस के, बिना टाइम टेबल के, बिना कार्यक्रम के, बिना किसी के इशारा करके कि तुम गिरीश पटेल भाई का भाषण खत्म हो रहा है, आओ जरा वोट ऑफ थैंक्स, ऑटोमेटिक मशीन की तरह अगर काम चल सकता है बिना क्रोध के, तो हमें यहां से बहुत सारी चीजें सीखनी है। दोस्तों, मेरा तो यही आप सबसे निवेदन है कि यहां से जितनी चीज आप सीख के जाएं, आज ही कुछ नोट कर लें, कुछ संकल्प कर लें। दिन में हमारा रोड सेफ्टी का बात था, मैंने सेशन खत्म होते ही अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई भी ड्राइवर, जितने ड्राइवर हैं, कोई ड्राइवर बिना जब तक उसकी गाड़ी में बैठे हुए लोग बेल्ट नहीं लगा लें, वो गाड़ी रवाना नहीं करेगा। इसी तरह कुछ और बातें मैं बहुत कह सकता हूं, समय की बहुत कमी है, लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो डेडिकेशन है यहां के स्टाफ का, मैं उन सबको, हमारे भाई बहन जो लोग बॉम्बे से पधारे हैं, जो सेवा के लिए आए हैं, जो रेलवे से, जो आपके इंडियन एयरलाइन से सब लोग पधारे हैं, वो मैं उन सबको बहुत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि इस यहां की ज्ञान गंगा से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे और हम लोग फिर अगेन एंड अगेन मिलते रहेंगे इस पावन स्थली पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद एस एन चांडक जी, बहुत उनके एक्सपीरियंस बहुत ही मोटिवेशनल थे और बहुत ही हम सुनना भी चाहते थे, लेकिन संक्षिप्त में हमने सुना। और बस आज का एक सत्र हम समाप्त करते हैं, बस इतना ही दरख्वास्त आप सभी से कि अभी जो दो मिनट के हम मेडिटेशन करेंगे, तो डोंट अलाउ योर माइंड टू क्रिएट एनी वेस्ट थॉट्स, जस्ट विजुलाइज करना कि गिरीश भाई ने यहां पे खड़े रह करके मुझे क्या कहा और मुझे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। पर बिछे हो कांटे कलियां वहां बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हटा दो, हो जहां जहां पर बिछे हो कांटे कलियां वहां बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हटा दो, गम का प्याला पी कर, हो गम का प्याला पी कर प्यास बुझाना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे